India's great need.
भारत की एक बहुत बड़ी आवश्यकता.
Clear preaching.
स्पष्ट प्रचार.
If you want to be a good preacher, you must be willing to work hard.
यदि आप एक अच्छे प्रचारक होना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होना है.
Remember what Paul told Timothy.
याद रखिए पौलुस ने तिमोथी से क्या कहा.
Look in 2 Timothy.
दूसरा तिमोथी को देखिए.
And chapter 2.
दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय.
Paul uses 3 examples.
पौलुस यहां पर तीन उदाहरण देता है.
Verse 3.
तीसरा पद.
You must be willing to suffer hardship as a good soldier of Christ Jesus.
यीशु मसीह के एक अच्छे योद्धा होने के नाते कठिन परिश्रम करने के तैयार होना है.
And what is the characteristic of a soldier?
एक योद्धा का क्या चरित्र होता है?
He is totally committed to the army.
वो संपूर्ण रीति से उस सेना के लिए समर्पित रहता है.
He doesn't have a divided heart.
उसका विभाजित हृदय नहीं होता.
He doesn't go out and do other things.
वो और दूसरे स्थान में जाके कोई दूसरा और कार्य नहीं करता.
He's totally committed to his service.
वो पूरी रीति से अपने सेवा के लिए समर्पित रहता है.
If you're going to be a good preacher, you must be totally committed.
यदि आप एक अच्छे प्रचारक होना चाहते हैं आपको संपूर्ण रीति से समर्पित होना है.
Look at verse 5.
पांचवे पद को देखिए.
The example of the athlete.
वो एक धावक का उदाहरण देता है.
The athlete is a disciplined man.
ये धावक है वो पूरी रीति से अनुशासित व्यक्ति है.
He is willing to deny himself.
वो स्वयं से इनकार करने के लिए तैयार रहता है.
He is willing to give up his liberties to get the prize.
वो अपनी आजादी को स्वतंत्रता को त्यागने को तैयार रहता है ताकि वो उस इनाम को प्राप्त कर सके.
If you're going to serve God,
यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं.
If you're going to be a good preacher,
यदि आप एक अच्छे प्रचारक होना चाहते हैं.
You must be totally committed,
आपको संपूर्ण रीति समर्पित होना है.
And you must be disciplined,
आपको अनुशासित होना है.
Number 3.
तीसरी बात.
Notice verse 6.
छठे पद को ध्यान
दीजिए. The hard working farmer should be first to share in the crops.
वो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान होना है.
What is Paul teaching from this example?
इस उदाहरण से पौलुस क्या सिखाना चाह रहा है?
You must be willing to pay the price.
कि तुम्हें एक कीमत चुकाने तैयार होना है.
If the farmer lays in the bed, he will never have a harvest.
और यदि एक किसान अपने बिस्तर पर ही आराम करता रहे उसे फसल सही प्राप्त नहीं होगी.
If he doesn't go out and keep his field clean, he will not have fruit.
यदि वो जाकर के अपने खेत की सफाई ना करे उसको फल नहीं मिलेगा.
You must work hard and keep your own life clean.
आपको एक कठिन परिश्रम करना है ताकि आपका स्वयं जीवन पवित्र हो.
You must discipline your time.
आपको अपने समय का अनुशासन करना है.
And you must be totally committed.
और आपको संपूर्ण रूप से समर्पित होना है.
Why do some preachers fail?
क्यों कुछ प्रचारक असफल हो जाते हैं?
Why do some preachers have no influence?
क्यों कुछ प्रचारों का कोई प्रभाव नहीं होता?
Why do some preachers have no power?
क्यों कुछ प्रचारों के पास कोई सामर्थ्य
नहीं? They fail in one of these three areas.
क्योंकि वो इन तीन क्षेत्रों में असफल हो जाते हैं.
They have a divided heart.
उनका विभाजित हृदय है.
They hold on to the world and to the pulpit.
वो पुलपिट को भी थामना चाहते हैं और संसार को भी थामते हैं.
And their heart is divided.
उनका हृदय विभाजित है.
Or they are not willing to discipline themselves.
वो अपने आप को अनुशासित करने के लिए तैयार नहीं है.
They are not willing to pay the price.
वो कीमत चुकाने तैयार नहीं है.
They waste their time.
वो अपने समय का बर्बाद करते हैं.
They don't have a schedule.
उनका कोई भी समय सारणी नहीं है.
A lot of young preachers don't know how to manage their time.
और कितने जवान प्रचारक जो हैं, वो अपने समय का संचालन करना नहीं जानते.
They're always running around like a chicken with his head cut off.
और वो एक मुर्गे के अगर गले को काट दें और वो इधर उधर फदकता है उसी तरह से उनका जीवन भी हो जाता है.
They never have enough time to do this.
उनके पास कोई पर्याप्त समय नहीं
They
कोई काम करने
never have enough time to do this.
कि उनके पास ये काम करने के लिए पर्याप्त
They're
समय
always running here and there.
वो इधर से उधर दौड़ते रहते हैं.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से
If you're going to be a useful preacher,
यदि आप एक प्रभावशाली प्रभावशाली उपयोगी प्रचारक
You only need to do two or three things.
आपको दो तीन चीजें नहीं करनी है.
And you need to discipline your time.
आपको अपने समय का संचालन करना है.
You need to arrange your time you're going to study.
आपको अपना समय का स्त्री चीज बनाना है नियमित करना है कि आप अध्ययन
करें. You need to arrange your time you're going to pray.
आपको अपने समय का निर्धारित करना है कि आप प्रार्थना में जाएं.
You need to arrange your time you're going to meet with men.
आपको अपने समय का निर्धारित करना है कि आप लोगों से मिले.
You need to arrange your time you're going to counsel the people.
आपको अपने समय निर्धारित करना है कि लोगों की आप काउंसलिंग करें.
We all have 24 hours in a day.
हमारे सबके पास 24 घंटे एक दिन में है.
The difference between a useful preacher and a non-useful preacher is how they use their time.
एक उपयोगी प्रचारक और अनुपयोगी प्रचारक के मध्य जो फर्क है वो ये है कैसे वो समय का उपयोग करते हैं.
And if you don't discipline your time for study, you will not be a good preacher.
और यदि अपने अध्ययन के समय को आप निर्धारित ना करें तो आप एक अच्छे प्रचारक नहीं होते.
Notice verse 15.
15 पद को ध्यान दीजिए.
You must be diligent to present yourself approved to God.
अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ऐसा करने वाला ठहराने का
What does it mean to be diligent?
क्या मतलब है ग्रहण योग्य ठहराना?
You have a clear goal.
आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है.
You know where you're going and you know how to get there.
वो आपको मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार से वहां पहुंच सकते हैं.
Then you cut out from your life everything that hinders you from those things.
और तब आप अपने जीवन की सारी उन बाधाओं को अलग हटा देते हैं जो आपको आगे बढ़ने में रोकती है.
And then you discipline and order your life so you can accomplish those things.
और तब आप अपने जीवन को इस प्रकार समय को अनुशासित करते हैं कि ताकि कि आप उन सारी चीज को प्राप्त कर सके.
Other men may waste their time, the preacher cannot waste his time.
दूसरे लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं लेकिन प्रचारक नहीं करता.
And you must be willing to study hard.
और आपको वचन का अध्ययन करने वाला कठिन करने वाला
cannot be lazy.
आप आलसी नहीं हो सकते.
So we've been talking about preaching biblical sermons.
और जो हम बात कर रहे हैं वो बाइबल आधारित प्रचार की बात कर रहे हैं.
We talked about the importance of preaching.
हमने इस बात पर बात की प्रचार का महत्व.
We talked about the definition of preaching.
प्रचार की परिभाषा के बारे में बात करी.
We talked about the authority of preaching.
प्रचार के अधिकार के बारे में बात करी.
We talked about the call to preach.
प्रचार के लिए बुलाहट के बारे में.
And we talked about the gift to preach.
और प्रचार के वरदान के बारे में बात करी.
Then we talked about some general principles of good preaching.
और एक अच्छे प्रचार के कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करी.
Then we talked about three basic kinds of sermons.
और तब हमने तीन मुख्य जो संदेश के तरीके हैं उसके बारे में बात करी.
A sermon of one verse.
जो प्रचार है एक शब्द के एक पद के अनुसार.
A sermon on one topic, one subject.
एक विषय को लेकर प्रचार करना.
Or expositional passage, preaching of a passage through a book.
और एक पुस्तक को लेकर उसपे खंडों को लेकर उसमें आगे बढ़ना.
Yesterday we talked about how to prepare a message on one verse.
कल हमने बात करी कि एक पद पर कैसे हम संदेश तैयार करते हैं.
Maybe in the future, if we have more time, we can come back and work in a workshop on this in more detail.
और हो सकता है जब पैरब आने वाले समय में हम दोबारा इकट्ठा हों और हमारे पास और समय हो तो हम एक व्यवहारिक रीति से जो कार्य इसको करेंगे.
It is useful at times to preach on one verse.
और ये समय समय पर एक पद पर प्रचार करना भी उपयोगी होता है.
When you go to visit another group and you have just a short time, you might preach one verse.
और जब आप किसी ऐसे समूह में जाते हैं आपके पास थोड़ा समय है तो होता है कि एक पद को लेकर आप.
If you go out and preach on the street and you have 5 minutes to preach, you might preach one verse.
और आप सड़क पे खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं 5 मिनट आपके पास है शायद एक पद को लेकर आप प्रचार करें.
If you go speak to a small group of men and you have a short time, you might speak on one verse.
और जब होता है कि छोटे समूह में आप जाए समय कम मैं आपके पास एक पद को लेकर आप प्रचार कर सकते हैं.
You need to know how to preach different messages in different situations.
आपको ये मालूम होना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से तैयार किए हुए संदेशों को कैसे प्रचार किया जाए.
If you're going out on the street to preach the gospel and you have 5 minutes, you don't say, I'm going to do a systematic exposition of the whole book of Ephesians.
आप सड़क पे अगर खड़े होकर जा रहे हैं 5 मिनट आपके पास है तो वहां पर आप नहीं करेंगे कि हम एफिसियों की पुस्तक को एक क्रमबद्ध लेकर हम प्रचार करेंगे.
One verse,
एक पद,
clear thought,
स्पष्ट विचार,
clear points,
स्पष्ट बिंदु,
direct application,
और एक स्पष्ट लागूकरण.
You need to know how to preach on one verse.
आपको मालूम होना चाहिए कि एक पद पे कैसे आप प्रचार करेंगे.
It must be a full verse full of much truth.
होता है उस पे बहुत सारे सत्य उसके अंदर पाए जाते हैं.
It must be a verse that gives you its own order.
और होता है सपा दो जिसमें आपको उसी में क्रम मिल जाए.
It must be a verse that you bring the truth out of that verse.
होता है कि उस ऐसी पद हो जिस पद में से आप सत्य को अलग निकाल कर बोल सकें.
And it must be a verse you are able to apply specifically and directly.
और वो पद के अनुसार आप स्पष्ट रूप से लोगों के जीवन में लागू कर ला सकें.
The old preachers called what they call they said capital text or big text, important text.
और कई सारे प्रचारक उसको बोलते हैं एक महत्वपूर्ण खंड.
You need to have your gun full of these kind of texts.
आपको इस प्रकार से आपके बंदूक में गोली पूरी होनी चाहिए खंडों के रूप में भी.
So that if someone asks you, we want you to preach in 2 minutes, you'll be ready.
और यदि आपको कोई एकदम से बोले कि आपको प्रचार करना है आप एकदम से तैयार हो.
Paul said, be ready in season and out of season.
पौलुस कहता है समय असमय में तैयार रहो.
And you preach out of your own experience.
और आप अपने अनुभव से प्रचार करते हैं.
And you must be able to pull out your gun and shoot it very quickly.
और आप अपने बंदूक को निकाल करके तुरंत शीघ्रता से आप वार कर सकते हैं.
And the way you do that is with a single bullet.
और जब उस तरह करते हैं एक ही उसमें गोली है.
You understand what we're saying?
आप क्या समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं?
Now in the future we can talk about this some more.
और भविष्य में हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे.
You must develop the ability to look at one verse and see its subject and its order.
और आपको एक ही पद को लेकर देख करके उसके विषय को लेकर के उसको क्रम में लाने सीखना होगा.
I ask young preachers this.
मैं जवान प्रचारकों से इस तरह से पूछता हूँ.
We have a little meeting here in 15 minutes.
हमारे पास यहाँ पर छोटी सी सभा का समय है 15 मिनट.
I want you to preach a message for us.
और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कोई संदेश दें. वो परेशान हो जाते हैं.
15 minutes.
15 मिनट.
I can't do it.
मैं नहीं कर पा.
I need to study 15 hours.
मुझे 15 मिनट पर तैयारी करने के लिए समय चाहिए.
Listen carefully.
आप ध्यान देते
हैं. If you're walking with God.
यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे
हैं. If you're living in the Word of God.
यदि आप परमेश्वर के वचन में रह रहे हैं.
If you're sensitive to the Spirit of God.
परमेश्वर के प्रति के प्रति संवेदनशील हैं.
If your life is filled with truth.
और आपका जीवन सत्य से भरा हुआ है.
You need to be ready to preach.
आपको तैयार होना प्रचार करने के.
Always be ready.
हमेशा तैयार हो.
Any questions?
कोई प्रश्न?
One verse.
एक पद.
Second kind of sermon.
दूसरे प्रकार का प्रचार.
Sermon on a subject.
जो विषयों पर लेकर प्रचार किया जाता है.
What do we mean by this?
इसका मतलब क्या हुआ?
We mean there are times that you need to preach on an important, necessary subject.
इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा समय भी आता है जहां आप एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप उस पर प्रचार करते हैं.
Maybe you're a pastor in a church and you're preaching through a book like Ephesians.
और हो सकता है कि आप अपने कलीसिया में प्रचारक हैं और आप एक पुस्तक को लेकर आप इफिसियों की पुस्तक को लेकर प्रचार कर रहे हैं.
But you realize that there are some problems in the church about a particular situation.
और आप ये महसूस करते हैं कि इस कलीसिया में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति और समस्या है.
And you stop that series and you want to speak to that problem.
और तब आप उस जो क्रम में आप चल रहे हैं उसको रोककर आप उस समस्या को लेते हैं.
And sometimes it's useful to take a topic and preach one sermon or several sermons on that topic.
और होता है कि एक विषय को लेकर चाहे आप एक संदेश दें या क्रम में कई संदेशों को दें.
Let me give you a few principles on preaching a topical message.
और मैं आपको कुछ सिद्धांतों को देना चाहूंगा जो विषयवद संदेश प्रचार के बारे में है.
Number one.
पहली बात.
You need to choose a clear, specific, important subject.
आपको आवश्यक है कि आप स्पष्ट महत्वपूर्ण विषय का चुनाव करें.
In three general areas.
तीन क्षेत्रों में.
Doctrine.
सिद्धांत के रूप में.
Personal experience.
व्यक्तिगत अनुभव के रूप में.
Practical Christian living.
और व्यवहारिक मसीह जीवन.
Doctrine, experience, practice.
सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव सीटिंग डॉक्ट्रिन
एक्सपीरियंस
अनुभव
एंड प्रैक्टिस
और उसका मसीह जीवन का व्यवहार में.
यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस.
आप इन चीजों में आपको भिन्नता समझनी है.
डॉक्ट्रिन इज सम क्लियर प्रीचिंग अबाउट बिब्लिकल ट्रूथ.
जो बाइबल के सत्य हैं उस सिद्धांतों को स्पष्ट देना.
You inform the mind of the believers about some truths.
और आपको विश्वासियों के मस्तिष्क में जो बाइबल के सत्य है उनको लाना है.
Personal experience has to do with your own personal relationship with God.
और जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उस बात पर निर्भर होता है कि आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है.
Practical Christianity has to do with your relationship with others and how you relate to them in the church and in the world.
और व्यवहारिक जो जीवन है वो सब आपस में किस प्रकार से कलीसिया में और कलीसिया के बाहर हमारा आपसे एक दूसरे साथ संबंध है.
And there are many different important subjects under those three heads.
और इस तीन शीर्षकों के अंतर्गत बहुत सारे विषय जो आते हैं.
And we'll give you some suggestions or definitions in a moment of what we mean.
और हम आपको इसकी कुछ परिभाषा देंगे कुछ क्षण में जिसका मतलब क्या है.
But you preach something that is important for the people right now.
और आप लोगों के लिए जो आवश्यक है उसको आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे.
If you know that there are a lot of people in your church that are struggling with the assurance of their salvation, you need to stop and preach on that.
अगर आप इस बात को देख रहे हैं कि आपके कलीसिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो एक संघर्ष विश्वास की निश्चयता का में संघर्ष महसूस कर रहे हैं तो आपको अपनी सीरीज को रोक करके उसको प्रचार करना है.
Now, is that doctrine, experience, or practice?
जो सिद्धांत हैं अनुभव है और उसके साथ व्यवहार में जो लाने वाली बातें.
पर्सनल एक्सपीरियंस
व्यक्तिगत अनुभव.
You realize in the church that many of the husbands are neglecting their responsibility to their wife.
यदि आप ऐसा महसूस करें कि बहुत सारे पुरुष हैं पति हैं जो अपनी पत्नियों के प्रति जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं.
So you preach a message or several messages on the topic of the husband's responsibility to his wife.
और तब आप कलीसिया में ऐसे संदेशों को प्रचार करते हैं कि एक पुरुष या पति की जिम्मेदारी अपने पत्नी के प्रति क्या है.
Is that doctrine, experience, or practice?
क्या ये सिद्धांत की बात है या व्यवहार की बात है जो आप ले रहे हैं या अनुभव की बात है.
Which one is that?
आप क्या बोलेंगे इसको. Sorry?
Can be both experience and practical.
Yeah.
But mostly practical.
Practical. व्यवहारिक जो संबंध है.
It's very practical in regard to how you live with your wife.
ये practical ये इसलिए है क्योंकि आप स्वयं किस प्रकार से अपनी पत्नी के साथ आप रहते हैं.
So you must be sensitive to the people you're preaching to.
और इसलिए आपको जो प्रचार कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत अधिक संवेदनशील होना है.
Or if you're invited to some place to speak for several days, you might preach on a topic.
और यदि आपको किसी भी स्थान पर कई दिन तक के लिए प्रचार करने के लिए बुलाया है हो सकता है वहां पर कुछ विषयों को लेकर आप प्रचार करें.
Now let me ask you a question.
अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा.
I've been here four times.
मैं यहां पर चार बार आ चुका हूं.
What kind of preaching am I doing when I am here?
जब मैं यहां पर हूं तो मैं किस प्रकार के प्रचार को कर रहा हूं. Sorry?
Of those three kinds of messages.
All three. Doctrinally also.
No. One verse.
Ek pad.
Or subject.
Subject.
Or a passage.
A passage.
Why am I doing that?
Main kyun kar raha hoon?
Time is short.
Samay kam hai.
I can't say everything.
Main sab kuch nahi bol sakta.
I want to speak to the most important things.
Aur main bahut mahatvapurna cheezon par baat karna chahta
hoon. I want to present it in a simple and clear way.
Aur main isko spasht aur sadharan tarike se aap tak pahunchaunga.
So that it is easy to remember.
Taki aapko yaad karne ke liye aasan ho.
Now when I was a pastor in a church, I preached through books consecutively.
Jab main kaliya mein pastor tha, maine pustakon ko kram se wahan prachar kiya.
Because I had more time to cover things slowly.
Kyunki mere paas adhik samay tha ki main dheere dheere un sare vishayon ko le sakun.
But I'm here for a short period of time.
Lekin main thode samay ke liye yahan par aaya hu.
I can't say everything.
Main sab kuch nahi bol sakta.
I want to talk about the most important thing.
Aur isliye main bahut mahatvapurn baat par aapse baat
karunga. So that after I'm gone you will remember it.
Aur jab main chala jaun tab bhi aap yaad rakhenge.
So you will say, what did that old man say?
Aur tab aap kahenge us mild vyakti ne kya kaha tha?
Well, he talked about four things.
Usne char baaton ke bare mein baat
ki. He talked about my life.
Usne mere jeevan ke bare
mein baat ki. He talked about my doctrine.
Usne siddhant ke bare mein
baat ki. He talked about my preaching.
Usne mere prachar ke bare
mein baat ki. And he talked about the church.
Aur kaliya ke bare mein
baat ki. We can't say everything.
Wo sab kuch nahi bolta.
You have to be limited.
Aapko seemit hona hai.
If you go to another church and you only have one opportunity to preach one day, you must say the most important thing.
Aur yadi aapke paas keval ek din ho, ek sandeh ho kis dusri kaliya mein, to aapko bahut mahatvapurn baat ko wahan par prachar karna hai.
And this is the usefulness of a subject or topical messages.
Aur ye jo vishay antargat प्रचार है उसमें के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा.
यू अंडरस्टैंड व्हाट वी से.
जो कुछ हम कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं.
यू प्रीच ऑन ए सब्जेक्ट.
आप एक विषय को लेकर प्रचार.
इट मस्ट बी क्लियर वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट.
और ये बहुत ही स्पष्ट व्याख्यित विषय होना है.
नंबर टू.
दूसरा.
यू चूज द मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस दैट एक्सप्लेन दैट सब्जेक्ट.
और तब आप उन मुख्य पदों को चुनते हैं जो उस विषय को अच्छी रीति से वर्णित कर सकें.
यू कैन नॉट से एवरीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट.
उस विषय के बारे में आप सब कुछ नहीं बोल सकते.
यू कैन नॉट यूज एवरी वर्स इन द बाइबल अबाउट दैट सब्जेक्ट.
और आप उस विषय को लेकर बाइबल के सारे पदों को नहीं दे सकते.
यू मस्ट चूज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द क्लियरेस्ट वर्सेज ऑन दैट सब्जेक्ट.
और आपको उसमें से जो महत्वपूर्ण और मुख्य पद है उनको चुनना.
एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट नो योर बाइबल.
और इसलिए आपको अपनी बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है.
व्हेन आई से द वर्ड जस्टिफिकेशन.
और जब मैं धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करता हूं.
इफ यू नो योर बाइबल यू शुड थिंक ऑफ सम मेजर वर्सेस.
और तब अगर आप अपनी बाइबल को जानते हैं तो आप एकदम से कुछ मुख्य पदों को याद कर लेंगे.
इफ आई से द वर्ड sanctification.
यदि मैं पवित्रीकरण के बारे में बात करता हूँ.
If you're living in your Bible, you will know the major verses.
यदि आप अपनी बाइबल में रह रहे हैं तो आप उन मुख्य पदों को याद कर लेंगे.
If I say the word redemption.
यदि मैं छुटकारे के बारे में बात करता हूँ.
Several verses should come to your mind.
कई सारे पद आपके मस्तिष्क में आने हैं.
That is why you must live in the Bible.
और इसीलिए आपको अपने वचन में रहना है.
So if someone asks you this question.
और यदि कोई आपसे बात करे, प्रश्न करे.
You go to someone's church.
यदि आप किसी कलीसिया में जाएं.
You have a message already prepared. You want to preach.
आप अपने आप कोई संदेश आपने प्रचार तैयार कर रखा है. आप वहां प्रचार करना चाहते हैं.
But right before you stand up to preach, the pastor says this to you.
और तब जब आप प्रचार करने तैयार हैं, उस समय पास्टर आपसे कुछ कह दे.
Brother, we have a lot of people in the church that don't understand justification.
भाई इस कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस धर्मी ठहराए जाने के बारे में नहीं समझते.
Would you teach us something about justification?
तो क्या आप उस समय तैयार होंगे कि आप धर्मी ठहराए जाने के विषय को प्रचार कर सके?
I didn't bring any notes on justification.
ओहो, मेरे पास तो कोई अभी तैयार नोट्स नहीं है.
I haven't prepared on justification.
मैंने कोई तैयार नहीं किया अभी.
You need to be willing to stand up and in a plain, simple way say two or three important things about justification.
और आपको दो या तीन मुख्य बातों को उस धर्मी ठहराए जाने के विषय में खड़े होकर बोलता है.
And you need to know the important major verses.
और आपको महत्वपूर्ण उन पदों को याद रखना है. Now,
if a young preacher has been a preacher for one or two years, he'll not be able to do this. But after 5, 10, 15, 20 years, his mind ought to be like a Bible concordance.
और जो आप 10-20 साल से सेवा में हैं, आपका मस्तिष्क वो अनुक्रमणिका की तरह होना चाहिए. कंपोनेंट जो है अनुक्रमणिका.
So if someone says a word, your mind is thinking.
और अगर कोई एकदम से किसी ने कोई पद कहा है, आपका दिमाग सोच रहा है.
Most preachers are not able to do that.
बहुत सारे प्रचारक ऐसा नहीं कर सकते.
Because they just read the Bible a couple of minutes every day.
और वो कुछ बाइबल को थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं.
You have got to have a disciplined Bible reading schedule.
आपके सामने जो नीति प्रतिदिन आपको अपने बाइबल पढ़ने के लिए आपको समय निर्धारित करना है, अनुशासित होना है.
नॉट जस्ट टू प्रिपेयर मैसेजेस,
केवल संदेश तैयार करने के लिए नहीं,
बट फॉर योर ओन हार्ट,
परंतु अपने स्वयं के हृदय के लिए.
यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रीडिंग थ्रू द बाइबल.
आपको निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है.
सो इफ समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन, यू से दिस.
और यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसको ये कह सके,
वेल जेरेमिया सेड दिस,
यर्मिया ने ये कहा है,
और जॉन सेड दिस,
और यूहन्ना ने ये कहा है,
और पॉल सेड दिस,
और उसने ये कहा है.
Your mind needs to be like a Bible concordance.
और आपका जो मस्तिष्क है वो बाइबल की धर्मशास्त्र पुस्तक की आपको अनुक्रमिका होना है.
So choose the major verses that explain the subject.
और इसमें उन मुख्य पदों को चुनकर रखिए जो उन विषयों को एक्सप्लेन करते हैं, वर्णित करते हैं.
Number three.
तीसरी बात.
Choose only a few important ideas that you want to say about the subject.
और उन मुख्य विशेष बातों को चुने जो आप कहना चाहते हैं.
Again, you cannot say everything.
फिर से मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ नहीं बोल सकते.
People cannot remember more than 3 or 4 things.
लोग जो है 3 या 4 से अधिक बातों को याद नहीं कर सकते.
Now the other day I had you write down 17 questions.
और मैंने उस दिन 17 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए.
But you are preachers.
आप प्रचारक हैं.
You should be able to stay up with those questions.
और आप प्रचारक हैं, इसलिए आपको उन प्रश्नों के अंदर आना है.
But if you're preaching in your church, you don't stand up and say, "Today I have a message with 20 points."
और आप जब अपने कलीसिया में खड़े हों, तो आप खड़े होकर ये नहीं कहते कि आज मेरे पास जो संदेश है, वो 20 बिंदुओं पर है.
People cannot remember but a few basic things.
लोग कुछ ही खास बातों को याद रख सकते हैं, सब कुछ नहीं याद रखते.
Good preaching takes one main idea and says 2, 3, 4 important things about it.
और जो एक अच्छा प्रचार है वो एक मुख्य विषय को लेकर 3 या 4 बिंदु को लेकर समझाया जाता है.
You cannot say everything about justification in 45 minutes.
45 मिनट में आप पूरे धर्मी ठहराए जाने के विषय को नहीं छू सकते.
You cannot say everything about the doctrine of God in one sermon.
एक संदेश में आप परमेश्वर के सिद्धांत को आप नहीं सिखा सकते.
Make your sermons shorter and simpler.
आपका संदेश जो है वो छोटा होना है और साधारण होना है.
Number 4.
चौथी बात.
Arrange these ideas in an outline or clear divisions.
आप जो कुछ भी आप विचार तैयार कर रहे हैं उनको एक स्पष्ट बिंदुओं में विभाजित करके तैयार करें.
And state each point in a clear way that people can remember.
और इस प्रकार से उनकी व्याख्या करें या वर्णित करें कि वो बिंदुओं को लोग स्पष्ट रीति से समझ सकें, याद कर सकें.
People forget things very easily.
लोग बहुत ही सरलता से चीजों भूल जाते हैं.
You have to put a hook in people's mind so they can hang the truth on it.
आपको लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार से वो हैंगर या हुक डाल देना है ताकि वो सत्यों को टांग सकें और याद रख सकें.
If they don't have a hook, they can't hang the truth on it.
और अगर उनके पास वो हुक नहीं है तो वो उसमें उस सत्य को नहीं टांगने पाएंगे.
A clear, well stated point is like a hook.
और वो खूटी कह सकते हैं वो
clear, well stated point.
वो जो स्पष्ट बिंदु है समझाए हुए वो उन खूटियों पे टंग सकते हैं.
A body must have a skeleton.
बहुत जो देह है उसके पास ढांचा है.
If you don't have a skeleton,
अगर आपके पास ढांचा नहीं है तो आप कैसे होंगे.
A lot of sermons are like that.
और बहुत सारे प्रचार इसी प्रकार से होते हैं.
They're like a jellyfish in the ocean. You see jellyfish, you know, that just floats around.
और वो
no skeleton.
वो ऐसी मछली जो समुद्र में तो होती है लेकिन उसके पास कोई ढांचा नहीं कोई शरीर वो नहीं और वो ऐसी ऐसी पकड़ती रहती है.
A lot of sermons are like that.
बहुत सारे प्रचार ऐसे होते हैं.
No skeleton.
उनके पास कोई ढांचा नहीं है.
No anchor. No anchor.
उनके पास कोई एंकर नहीं है. लंगर नहीं है. लंगर.
A topical message, a subject message.
जो विषय पर आधारित संदेश है.
Clear, important subject.
स्पष्ट विषय.
Choose the most important verses.
मुख्य पदों को चुन करके.
You don't choose 100 verses.
आप 1000 पदों को नहीं चुनते.
A lot of guys preach like this.
बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कैसे.
Now I want to preach on justification.
मैं धर्मी ठहराए जाने पर प्रचार करना चाहता
हूँ. Now look at Genesis chapter 15.
उत्पत्ति उसके 15 अध्याय देखें.
And everyone turns to Genesis 15.
सब लोग 15 अध्याय पर पलट रहे हैं.
Now I'll turn to Psalm 32.
उसके बाद भजन संहिता 132.
Everyone turns to Psalm 32.
सब 132 भजन.
Now turn to Romans 4.
फिर उसके बाद रोमियों 4 में आ गए.
Everyone turns to Romans 4.
सब लोग रोमियों 4.
And now turn to Galatians 3.
उसके बाद कान.
Now turn back to Exodus.
तब उसका निर्गमन में जा रहे हैं.
And people are just
लोग अपनी बाइबल को रख देते हैं. बाइबल को रख देते हैं.
Listen carefully.
ध्यान से याद रखिए.
Clear subject.
स्पष्ट विषय.
A few major points.
कुछ मुख्य बिंदु.
That is proven each point by one clear verse.
और वो एक स्पष्ट पद के द्वारा.
Quote the verse or turn to the verse and explain the verse.
आप उस पद को बोलिए उस पद को निकालिए और उसको समझाइए.
Then review what you've said.
और तब उसको दोहराइए जो आपने कहा है.
Show how it explains the subject.
और तब इस बात को दिखाइए कि उस विषय से को किस प्रकार से पद समझा रहा है.
And then tell them now we're moving to our second point.
और तब कहिए कि हम दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ रहे हैं.
If you don't tell them when you're moving to the next point, the train will leave the station and they won't be on it.
और तब वो इस प्रकार से होगा यदि आप बिंदु को ना बताएं तो उस समय ऐसा होगा कि ट्रेन स्टेशन को तो छोड़ रही है लेकिन जो लोग हैं सवारी वो ही खड़े हुए हैं.
A lot of people miss the train when you're preaching.
और बहुत सारे लोग हैं ट्रेन को खो देते हैं जो आप प्रचार कर रहे हैं.
What do we mean?
इसका मतलब क्या हुआ?
They're not able to make the connections.
वो उस क्रम को जोड़ नहीं सकते.
You need to help them see where you're going.
और आपको ये करना जरूरी है कि आप उनकी मदद करें कि आप वो जान सके आप कहाँ जा रहे हैं.
We've already defined the nature of justification. Now we want to talk about the grounds or the source of justification.
हमने एक बार पहले से आपको समझा दिया कि जो धर्मी ठहराए जाने का स्वभाव क्या है चरित्र क्या है लेकिन अब हम आपको इस दूसरे विषय पर ले जा रहे हैं जो उसके बारे में उसका स्रोत क्या है.
You say that's too simple.
ये बहुत साधारण है.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
People cannot follow you.
लोग आपके पीछे नहीं चल सकते.
You've been studying this message for 2 or 3 days.
सोचता है कि आप इस संदेश को 2-3 दिन आप सत अध्ययन कर रहे हो.
They come into the church and they have no idea what you're going to talk about.
जब वो आप चर्च में आते हैं कलीसिया में आते हैं उनके पास कोई आइडिया नहीं है सोच रहे हैं कि क्या करने बोलने जा रहे हैं.
And if you don't help them to slowly understand what you're saying, they will not stay with you.
और यदि आप उनकी मदद नहीं करेंगे कि क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं वो उसको समझें तो आपके साथ नहीं होंगे वो.
Choose a clear subject.
स्पष्ट विषय चुनिए.
Major verses.
मुख्य पदों को चुनिए.
The most important points you want to make.
और जो मुख्य बिंदुओं को आप विशेष बिंदु बनाना चाहते हैं उनको रखिए.
Arrange it in a simple outline.
और उसको क्रम में आप रखिए.
Explain each verse.
और हर एक पद की व्याख्या करिए समझाइए.
Relate it to the subject.
उस विषय के साथ उसको जोड़िए.
And then give useful application.
और तब एक उपयोगी लागूकरण को दीजिए.
Any questions?
कोई प्रश्न? लागूकरण application. Just I am asking.
Yes.
What you think about application? लागूकरण से आप क्या समझते हैं? What you understand with application? निचोड़ क्या है? Nature, no, nine. We have to explain about the application.
All right.
Yeah, confusing.
In a moment, I'm going to explain what we mean by application.
अब कुछ समय में इस लागू करने को मैं आपको समझाना चाहूँ इसका मतलब क्या है.
A sermon has three main parts.
जो संदेश है उसके तीन मुख्य भाग हैं.
An introduction.
परिचय.
A main body of explanation.
उसकी व्याख्या करना दूसरा भाग.
And a conclusion with application.
और उसका अंतिम भाग है लागूकरण से.
Or you can add the application inside the main part of the sermon.
और उस संदेश के भाग के बीच में भी आप उसको लागूकरण को ला सकते हैं.
All good preaching has those ingredients.
और हर अच्छे प्रचार में ये तीनों स्वाद पाए जाते हैं.
Now let's stop for a moment and talk about those three things.
अब रुक करके हम इन तीन बातों के बारे में बात करेंगे.
A sermon has an introduction, a main body of explanation, and a conclusion.
एक हर एक संदेश में एक विषय एक परिचय होना है. भाई उमेश भाई मैंने क्या बोला है.
Now you can preach a sermon.
इधर ध्यान दीजिए.
You can preach a sermon in many different ways.
आप बहुत तरह से इस वचन को प्रचार कर सकते हैं.
But if you want to be clear, you need to have at least these three parts.
लेकिन यदि आप इस पर संदेश देना चाहते हैं तो तीन भाग होने जरूरी हैं.
Let's talk about the introduction.
पहली बात करेंगे परिचय के बारे में.
What are the ingredients or what are the parts of a good introduction?
उस जो परिचय का भाग है उसमें क्या क्या मुख्य वस्तु पाई जाती हैं.
Now a lot of preachers stand up and preach like this.
और बहुत सारे प्रचारक खड़े होते हैं इस प्रकार से प्रचार करते हैं.
Last week we preached on verse 5 and 6. Today we're preaching on verse 7 and 8.
पिछले हफ्ते हमने 5 और 6 पर प्रचार करा. आज हम 7 और 8 पर प्रचार करेंगे.
And they just start talking.
और बात करने लगते हैं.
When people come into the church, you have to help them get ready to listen.
और जब लोग कलीसिया में आते हैं आप उनको तैयार करना है ताकि वो आपको सुनने के लिए तैयार हो सके.
You have to get their attention.
आपको उनको अपनी ओर आकर्षण करना है ध्यान देना है.
You have to help them come in to the sermon.
ताकि वो आपके उनको सहायता करेंगे ताकि वो आपके संदेश की ओर खींच सके.
And the introduction is like the door of the sermon.
और जो परिचय है वो उस संदेश के दरवाजे के समान है.
An introduction should be short and clear.
और जो परिचय है वो छोटा और स्पष्ट होना है.
A lot of men preach for 1 hour and they have an introduction for 40 minutes.
और कितने लोग जो बहुत लंबा एक घंटा प्रचार करते हैं लेकिन उनका जो परिचय है वो 40 मिनट का हो जाता है.
That's not useful.
वो एक उपयोगी नहीं है.
An introduction should do several clear things.
और जो परिचय है वो बहुत स्पष्ट से कुछ बातों को कहना है.
नंबर वन
पहली चीज.
इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्रिएट ए नीड.
वो परिचय लोगों की रुचि को उत्पन्न कर सके और उनकी आस्था को उत्पन्न कर सके.
व्हाट डू वी मीन बाय दैट.
इसका मतलब क्या है.
You need to show people why it's important for them to listen to this message.
इसका मतलब ये है कि आप उनको ये दिखा रहे हैं कि आज उनके लिए संदेश को सुनने की क्या आवश्यकता है.
They have to be encouraged to know this message is important.
और वो इस बात को ध्यान दे सकें कि जो आज का संदेश है वो महत्वपूर्ण है.
The introduction doesn't have to be long.
वो जो परिचय है बहुत लंबा नहीं होना है.
So it creates interest.
और वो रुचि उत्पन्न करता है.
It gets people's attention.
लोगों का ध्यान आकर्षित करता है.
One old preacher one time, he saw the people were very sleepy when they came to church, so he had a gun.
और एक बार एक प्रचारक ने देखा लोग जब आए हैं चर्च में वो सो रहे हैं बहुत, उसके पास एक बंदूक थी.
So he came to the church.
और वो कलीसिया में आए.
Stood up in the pulpit.
और पुलपिट पे खड़ा हुआ.
Boom.
कल मैंने कविता में सुनाया था.
Now that's not what we mean.
इसका मतलब ये नहीं है.
But we do mean this.
लेकिन इसका मतलब ये है.
You need to get people's attention.
कि आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लें.
You need to show them that this message is important.
कि आप उनको दिखा रहे हैं कि संदेश उनके लिए आवश्यक है.
You need to give them a reason to listen to the message.
और आप उनको एक कारण दिखा रहे हैं जिससे वो जान सके कि उनके लिए संदेश सुनना अनिवार्य है.
That's the first thing an introduction does.
पहली बात ये परिचय में होता है जब आप संदेश देते हैं.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं.
You need to tell people why they need to listen to this message.
आप उनकी उस आस्था को दिखा रहे हैं कि क्यों उन्हें संदेश को सुनना है.
You can't think this way. Well, it's the Bible. Of course they listen to the message.
Oh, सच है आप ये कहेंगे. Oh, ये Bible है. जरूर वो संदेश को सुनेंगे.
You need to tell them why this particular message is important.
Oh, आपको उनको बताना है कि ये संदेश क्यों उनके लिए आवश्यक है.
For example, if you were preaching the gospel to some people.
यदि आप कुछ लोगों के लिए आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं.
You could stand up and say this.
आप खड़े होकर कह सकते हैं.
One day you're going to die.
आप एक दिन मरने जाएंगे.
You don't know when you're going to die.
आप नहीं जानते कब आप मरने जाएंगे.
You could die tonight.
आज हो सकता है.
The Bible says after you die you face the judgment of God.
परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मरोगे तो मैं परमेश्वर का न्याय का सामना.
Are you ready to face the judgment of God?
क्या आप परमेश्वर के न्याय को सामना करने तैयार हैं?
If you're not ready, I want to tell you today to how to face the judgment of God.
और मैं यदि आप तैयार नहीं है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप परमेश्वर के न्याय का सामना कर सकते हैं.
You have to create a need.
आपको एक आस्था को उभारना उठाना है संदेश में.
Number two.
दूसरी बात.
We're talking about an introduction.
हम परिचय के बारे में बात कर रहे हैं.
You have to introduce your subject. You have to tell people what you're going to talk about.
और आपको एक विषय को लाना है कि आप किस विषय को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं.
You tell them plainly up front what you're going to talk about.
आपको उनको स्पष्ट बताना है कि क्या कुछ विषय में आप बात करना चाहते हैं.
You're helping them get on the train.
और आप उनकी सहायता कर रहे हैं कि आप उनको ट्रेन में ला रहे हैं.
You tell them what you're going to talk about and where you're going to go.
कि आप किस विषय पर उनसे बात कर रहे हैं और कहां आप जा रहे हैं.
If they don't know what you're talking about and they don't know where you're going, they cannot follow you.
अब अगर आप उनको ये नहीं समझाने पा रहे हैं कि आप क्यों कहां उनको ले जा रहे हैं वो कभी आपके पीछे नहीं जाएंगे.
Do you understand what we're saying?
आप जो हम कह रहे हैं समझ रहे हैं आप.
The problem with a lot of preachers is they never get people's attention immediately.
और प्रचारों के साथ समस्या ये है कि बहुत सारे प्रचारक लोगों के खिंचाव को अपने ऊपर नहीं लाने पाते.
And they just get up and start speaking.
और वो खड़े होते हैं प्रचार करने लगते हैं.
बा 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 बा. And they're not looking at the people.
और वो लोगों के उन्हें देख रहे हैं.
One guy is looking out the window.
और एक व्यक्ति प्रचारक खिड़की को देख रहा है.
Another guy is looking at his watch.
दूसरा अपनी घड़ी को देख रहा
है. Another guy is checking his cell phone.
वो अपने दूसरा सेलफोन को देख रहा है.
Another guy is thinking about what he's going to eat for lunch.
और दूसरा सोच रहा है कि लंच में क्या खाएगा.
They're all thinking about different things.
वो सारे लोग अलग अलग सोच रहे हैं.
And if they don't get on the train when it leaves the station, you'll leave them behind.
और यदि वो ट्रेन में ना बैठे और वो स्टेशन को ट्रेन छोड़ जाए तो मतलब आप उनको स्टेशन पे छोड़ जा रहे सवारियों को.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ.
You say this is too simple.
आप कहेंगे बहुत साधारण है.
This is not too simple.
ये साधारण नहीं है.
A lot of men preach for 1 hour and the people have not been with them for a minute.
और बहुत सारे लोग एक घंटा प्रचार करते हैं लेकिन उनके साथ एक मिनट भी नहीं रहने पाते.
Because they don't know why I should listen to this message.
क्योंकि उनको नहीं मालूम क्यों उनको संदेश को सुनना है.
A good introduction.
एक अच्छा परिचय.
Creates a need.
वो आस्था को उभारता है.
Introduces the subject.
और वो अपने विषय के अनुसार परिचय देता है.
And number three tells you how you're going to develop the subject.
और तब उसके बाद तीसरे किस प्रकार से विषय को आप आगे बढ़ाते हैं.
Any questions?
कोई प्रश्न है? गोली चला दी.
Are you with me?
क्या आप मेरे साथ हैं?
Are you on the train?
क्या आप उस रेलगाड़ी में हैं?
Question.
प्रश्न. Is this only for topical?
This is for all sermons.
तो सिस्टम तो वही आ जाएगा. ये जो तीन बातें महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो हर विषय के लिए है. चाहे आप टॉपिकल दे रहे हैं, विषय दे रहे हैं, चाहे आप पैसेज को लेकर चल रहे हैं, चाहे पद को लेकर चल रहे हैं, ये आपके संदेश में तीन हर संदेश में होना है.
They need to know why I need to listen to this message.
क्योंकि उनको इस बात को ध्यान देना है क्यों ये संदेश हमें सुनना है.
Any other questions on the introduction?
ये परिचय. कोई और प्रश्न?
Now, an introduction can be 1 minute long.
संदेश जो परिचय एक मिनट का होता है.
If your introduction is 20 minutes,
अगर आपका 20 मिनट का संदेश
too long,
तो बहुत लंबा होगा.
Yes. Question.
कुछ प्रश्न है? आप हाथ उठा रहे हैं? हम सोच रहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं.
He's going to miss the train.
आप गाड़ी से छूटने वाले हैं, छूट जाएंगे.
A good sermon has an introduction, a main explanation, and a conclusion.
और एक अच्छा संदेश जो है उसमें परिचय होता है अच्छा, फिर उसका व्याख्या होती है और फिर लागूकरण होता है.
Now let's talk about the conclusion.
अब निचोड़ के बारे में बात करें.
Many preachers fail on this point.
बहुत सारे प्रचारक इस बिंदु में असफल हो जाते हैं.
What are the parts of a good conclusion?
एक अच्छे निचोड़ या समाप्ति में जो संदेश की समाप्ति या निचोड़ है,
number one,
कौन से भाग होते हैं?
Number one,
पहली बात,
you briefly review your content.
जो कुछ भी आपके विषय था उसको आपने पूरी रीति से दोबारा दोहराया है.
Now a lot of preachers make a mistake on this point.
और इस बिंदु पर बहुत सारे प्रचारक गलती करते हैं.
There's two extremes, two wrong ways to do conclusion.
ये निचोड़ करना या समाप्त करने में दो अलग अलग गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं.
One wrong way is you don't summarize your content at all.
और एक गलत तरीका यह है कि आप अपने पूरे विषय को जिस रीति से निचोड़ करके लाना चाहिए नहीं लाते.
Another wrong way is in your conclusion you preach the whole sermon again.
और दूसरा ये गलती ये होती है कि आप अपने उस निचोड़ में उस पूरे संदेश को दोबारा प्रचार कर देते हैं.
Don't do either one of those things.
इन दोनों में से कोई काम ना करिए.
Simply summarize what you've said.
जो कुछ भी आपने कहा है साधारण रीति से उसको आपने चोड़ में ले आइए.
Number two.
दूसरी बात,
apply it specifically to their hearts.
लोगों के हृदय में विशेष रूप से वो कार्यकारी हो सके, लागू हो सके.
What do we mean by application?
उस लागूकरण का या कार्यकारी होने का मतलब क्या है?
You take the truth and you bring it close to men's life and to their heart.
आप उस हृदय उस सच्चाई को लेते हैं, वचन की सच्चाई को लेते हैं और उस व्यक्ति विशेष या लोगों के जीवन में हृदय की निकटता में आप लाते हैं.
If your purpose is to encourage them, you find different ways to encourage them.
और यदि आप चाहते हैं कि संदेश के द्वारा लोग प्रोत्साहित हों तो आप विभिन्न द्वारा उसको आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे.
गुड एप्लीकेशन इज स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट.
और जो एक अच्छा निचोड़ होता है वो सीधा और स्पष्ट होता है.
Now, most preachers are not willing to do this.
और बहुत सारे प्रचारक ये करने के तैयार नहीं होते.
I told you before, they just say, "May God bless His word." Amen.
और उसके यहाँ कह देते हैं कि परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे. आमीन.
That is not application.
ये वो लागूकरण नहीं है.
Good application is specific and direct.
वो जो एक अच्छा निचोड़ होता है या लागूकरण होता है वो स्पष्ट होता है और सीधा.
An application, you're speaking to man's heart.
वो आप जो लागूकरण है आप मनुष्य के हृदय से बोलते हैं.
You're speaking to man's conscience.
उसके विवेक से बात करते हैं.
You're speaking to man's life and practice.
उसके जीवन और व्यवहार से बात करते हैं.
And good application asks specific questions.
और एक अच्छा जो लागूकरण है वो स्पष्ट प्रश्नों को पूछता है.
You're preaching to husbands.
आप पतियों से बात कर रहे हैं.
And you preach husbands, love your wife as Christ loved the church.
और आप प्रचार कर रहे हैं पतियों अपनी पत्नियों से इस तरह से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया.
But if you don't give specific application, they'll just go out the door and they won't really change.
और यदि आप अपने उस निचोड़ में स्पष्ट ना हो तो वो जाएंगे और अपने जो आपको परिवर्तित नहीं करने पाएंगे.
You need to think about 5 or 10 specific questions to ask husbands about their relationship to their wife.
तो आपको कुछ प्रश्नों को चुनना होगा कि आप स्पष्ट उनसे पूछें ताकि वो अपने बारे में सोचें उनके व्यक्तिगत जो संबंध उनके पत्नियों के द्वारा है.
Well, you say, well, we don't do that in India.
वो हम भारत में नहीं करते.
In the Word of God, we must speak specifically to people.
और जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें लोगों से स्पष्ट बात करना सीधे बात करना.
The problem of many preachers, they don't think enough about application.
और प्रचारकों की बहुत सारी समस्या यह है कि वो लागूकरण के बारे में नहीं सोचते हैं.
They're too general.
वो बहुत ही साधारण सामान्य होते.
They're too fearful.
वो डर उनके अंदर भय भी होता है.
They don't know how to do it.
और उनको ये भी मालूम कैसे वो करना है.
They don't want to hurt people's feelings.
वो लोगों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते.
They're not willing to speak specifically to them.
और वो सीधे उन लोगों से बात नहीं करना चाहते.
Most preaching is too general.
बहुत सारे प्रचार जो है वो बहुत ही सामान्य है.
You need to be specific.
आपको स्पष्ट होना है.
Husbands, do you love your wife? Husbands, do you love your wife?
क्या तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करते हो?
Are you gentle with your wife?
आप अपनी पत्नियों के साथ आप gentle हैं?
Do you treat your wife with honor?
क्या अपनी पत्नियों के साथ आप आदर के साथ व्यवहार करते हैं?
Do you beat your wife?
क्या आप अपनी पत्नियों को आप मारते हैं?
Do you scold your wife?
क्या आप अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं?
Do you pray with your wife?
क्या आप अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करते हैं?
Do you know your wife's deepest needs?
क्या आप अपनी पत्नियों की आस्थाओं को जानते हैं?
Do you help your wife in the home?
क्या आप अपनी पत्नियों को साथ घर में आप मदद करते हैं?
When you try to have a physical relationship with your wife, do you just selfishly seek your own desire?
केवल आप जब अपने पत्नी के साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं और संबंध बनाने के द्वारा?
You need to be specific and direct.
आपको स्पष्ट और सीधे बोलना है.
You understand what we're saying?
आपको क्या समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ?
Most preachers don't want to do that.
बहुत सारे प्रचारक ऐसा नहीं करना चाहते.
But if you're going to be useful, you have to take the word of God.
और यदि आप उपयोगी होने चाहते हैं तो आपको परमेश्वर वचन को लेना है.
Like a knife.
एक चाकू के समान.
You teach the truth.
आप सत्य को प्रचार करते हैं.
You show them the truth.
और उनको आप सत्य दिखा रहे हैं.
This is part one, this is part two, this is part three.
ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग.
Most preachers do this.
बहुत सारे लोग.
Amen.
को डक देते हैं. आमीन. और रख देते हैं.
When you have done all your explanation, you're just beginning.
और जब आपने आरंभ में अपना उसको व्याख्या की आरंभ है.
What do you do then?
तब क्या करेंगे?
You take the knife.
आप चाकू को लेते हैं और उनके हृदय में डाल देते हैं और मारते हैं. गाय काम ब्याज. गाय काम ब्याज.
And you show a man his heart.
जब एक व्यक्ति के हृदय को दिखाते हैं वो अपना हृदय देख रहे हैं.
is looking at us.
Most preachers are not willing to do that.
बहुत सारे प्रचारक ये करने के लिए तैयार नहीं होते.
Why?
क्यों?
They fear the face of man.
क्योंकि वो मनुष्य के चेहरे को देखकर डरते हैं.
They don't have courage.
उनके पास साहस नहीं होता.
They don't know how to do it.
उनको नहीं मालूम कैसे उसको करना.
They don't know how to use the sword of the spirit.
उनको नहीं मालूम कि जो तलवार है परम वचन की तलवार है कैसे उसको इस्तेमाल करना है.
Now you don't always plunge the knife into people.
वो हमेशा आपको चाकू ही नहीं भोगना है.
You also take the medicine of the gospel of the truth and you apply it to people.
जो औषधि है परमेश्वर के वचन की उसको भी लेके उसको लगाना है.
You apply the truth in different ways to different people.
और आप विभिन्न प्रकार से उस सत्य को विभिन्न लोगों में विभिन्न प्रकार से लागू कर रहे हैं.
Brother, if you keep sitting on the front row, every time I'm here, I operate on him.
अगर भाई आप आगे की सीट पर बैठे रहेंगे जब भी मैं यहाँ पर रहूंगा मैं आपका चीरफाड़ करूंगा.
I've cut him open about five yes, times.
कम से कम पांच बार मैंने आपको कर चुका हूं.
This is application.
ये लागू करना है.
All right, now I want to give you an assignment here.
अब मैं एक काम आपको देना चाहता हूँ.
I want you to take 15 minutes.
मैं चाहता हूँ 15 मिनट आप लें.
And I want you to come up with 3 topical messages.
और मैं चाहता हूँ 15 मिनट में 3 विषय के संदेश तैयार करें.
One on a doctrine.
एक सिद्धांत पर.
One on spiritual experience.
एक आत्मिक अनुभव पर.
One on practical living.
और एक व्यवहारिक जीवन पर जो व्यतीत करते हैं उस पर.
It needs to be. I want you to have a specific subject.
मैं चाहता हूँ एक विशेष विषय को आप चुन लें.
And I want you to tell me the 3 most important things you would say about each one of those subjects.
और वो तीन और देखिए तीन आपको काम करना 15 मिनट है. तीन संदेश एक सिद्धांत के रूप में कोई डॉक्ट्रिन के रूप में.
For example,
उदाहरण के लिए
under doctrine,
जो सिद्धांत है उसके अंदर
the character of God,
परमेश्वर का चरित्र
the decrees of God,
decrees of परमेश्वर के गुण
the names of God,
परमेश्वर के नाम
the providence of God,
परमेश्वर के जो प्रयोजन है बहुत अच्छा है.
The doctrine of man.
मनुष्य का सिद्धांत.
The nature of man.
मनुष्य का स्वभाव.
The sinfulness of man.
मनुष्य के पाप के स्वभाव.
The doctrine of Christ.
मसीह का सिद्धांत.
The person of Christ.
मसीह का व्यक्तित्व.
The work of Christ.
मसीह के कार्य.
The different offices or functions of Christ.
मसीह के अलग अलग कार्य.
Experience.
दूसरा विषय अनुभव.
How to read the Bible.
कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है.
How to have a useful prayer life.
प्रार्थना का जीवन कैसा होना है.
How to practice meditation on the word.
परमेश्वर के वचन में कैसे मनन करना है.
How to keep a good conscience before God.
कैसे परमेश्वर के सामने बढ़ना है.
Experience.
अनुभव.
I mean practice, practical living.
Practical living का व्यवहारिक जीवन जीना.
Relationship of husbands and wives.
पति पत्नी के साथ संबंध.
Your responsibilities in the church.
आपकी कलीसिया प्रति जिम्मेदारियां.
These are practical subjects.
ये व्यवहारिक विषय है.
I want you to take 15 minutes.
मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट लें.
It's all I want you to do. Write down one main subject and 3 points you want to say under. That's all.
बस केवल तीन बिंदुओं को लेकर उस एक एक चुनकर आप तैयार करें.
And take 5 minutes for each one and in 15 minutes we'll take a break.
और 15 मिनट के बाद हम प्रार्थना करेंगे. आप 5 मिनट एक चीज के लीजिए और तैयार करिए. स्टार्ट.
एनी क्वेश्चन.
कोई प्रश्न है.